مجید صالحی قدایون ریاحی پرویز فلاحی پور رامین ناصر نصیر اسماعیل سلطانیان سرگرداں روح
میں نے بہت غلط کیا ہے، لیکن اگر واپس نہ آتی اور تمہیں نہ بتاتی تو مرتے دم تک خود کو معاف نہ کر پاتی۔
وکیلی کہاں ہے؟
مجھے نہیں معلوم۔
چھوڑو بھی، اب کیا پلان ہے تم لوگ کا؟
اس نے مجھے بھی دھوکا دیا ہے
اور میں یقین کر لوں، ہے نا؟ تم لوگ نے سوچا ہوگا ایک بار تو اسے بیوقوف بنا دیا، سوچا اب بھی دوبارہ بنا سکتے ہو، ہے نا؟
میں سچ کہہ رہی ہوں، وکیلی کاغذات لے کر بھاگ گیا۔
تم کیوں واپس آ گئی؟
میرے لیے کچھ نہیں بچا۔ سوائے در بدری و مصیبت و شرمندگی کے، پتا نہیں پاگل ہو رہی ہوں، اب برداشت نہیں ہوتا، ساری طاقت ختم ہو چکی ہے۔
ماموں، تمہارے والد صاحب کہاں ہیں؟
مسافر خانے میں۔ تمہیں اپنی سچائی کا یقین دلانے کے لیے میں ربابے کی تلاش کرنے میں تمہاری مدد کرنے پہ تیار ہوں۔
وصیت نامے کیا ہوا؟
وکیل نے اسے جلا دیا۔ لیکن ابھی ہمارے پاس ایک راستہ ہے، باقی وصیت ناموں کو تلاش کرنا ہوگا۔
باقی وصیت ناموں کو بھی تلاش کرنا ہوگا۔
جلال صاحب، خدا کی قسم سچ کہہ رہی ہوں، ہم مل کر ربابے کو تلاش کریں گے۔
تم پھر جھوٹ بول رہی ہو، تم سمجھتی کہ مجھے کچھ سمجھ میں آتا ہے؟ بچہ ہوں میں، تم باقی کے وصیت نامے تلاش کر کے پھر بھاگنے کے چکر میں تاکہ تم دونوں کی ساری پریشانی ختم ہو جائے؟
اچھا تو میں نے کیوں تمہیں خود کو یہاں بند رکھنے دیا؟ تمہیں یقین آ جائے اس لیے؟
نہیں، اس لیے کہ مجھے پھر سے بیوقوف بنا سکو۔
نہیں نہیں، خدا
قسم مت کھاؤ، میں کہتا ہوں قسم مت کھاؤ۔
जलाल, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत ठोकरें खा चुकी हूं। लालच ने तो बहुत जलील करके रख दिया है, मेरी रूह तक को बिल्कुल चूर चूर कर दिया। अब मेरे लिए कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा।
अगर उस कमबख्त वकील ने तुम्हारे साथ धोखा न किया होता तो भी तुम इस तरह की बातें करती? अब जबकि बेवकूफ बना दी गई और तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं आया तो बहुत मजलूम बन रही हो, सब लोगों की तरह। सफर, तुम तो खुद ही गवाह हो।
खुदा भी गवाह है।
फिलहाल इसे यहीं रखा जाएगा।
जलाल साहब, मेरे वालिद मुसाफिर खाने में अकेले हैं, मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ तुमसे।
सारी गलती मेरी ही है।
लेकिन तुम अभी जिंदा हो।
जैसे ही वसीयतनामा मिला था मुझे रबाबा की तलाश शुरू कर देनी चाहिए थी, लेकिन बुरा हो कि उस वकील का कि उसके चक्कर में पड़ गया।
लेकिन अब वक्त की कीमत का ज्यादा इल्म है तुम्हें।
कैसा वक्त, अब मैं क्या कर सकता हूँ?
तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है।
मुझे कुछ नहीं मालूम है।
सिर्फ एक बात जाननी चाहिए, वही सबसे अहम है।
मुझे क्या जानना चाहिए?
यही कि असाए मूसा तुम्हारे हाथ में है। अभी जिंदा हो और मौका है, यही यही जानना चाहिए तुम्हें। इसी की अहमियत है। जब तुम अकेले और दुखी होते हो, उस आखिरी घड़ी में जब तुम्हें शदीद जरूरत है, अगर खुदा तुम्हारी बात ना सुने तो तुम्हें कैसा लगेगा? कम से कम उसकी बात सुन लो।
किसी औरत के अकेले रहने का मतलब क्या होता है जानते हो? ये दुनिया भेड़ियों से भरी हुई है, जानते हो इसका क्या मतलब है? अशरफ साहब ने एक अकाउंटेंट के लिए इश्तेहार दिया था, मैं गई, पास हो गई, लेकिन मैंने कहा कि कंपनी रोज नहीं आ सकती अपने बीमार वालदेन की वजह से। उन्होंने मान लिया, कुछ दिन तक आना जाना रहा, उन्हें मेरे हालात का इल्म हो गया। उनका इसरार था कि मैं कहीं शादी कर लूं, कई अच्छे रिश्ते भी लाए, लेकिन मैं इनकार करती रही। एक दिन उन्होंने कहा हम नामहरम हैं, मैं भी लालच में पड़ गई, सोचा बूढ़े हैं, पैर कब्र में लटके हैं, उनकी बीवी बन जाऊं और बाद में उनकी जायदाद की वारिस बन जाऊंगी। मैंने कहा मैं आपकी बेटी की तरह, लेकिन फिर भी मैं आपसे शादी करने पर तैयार हूं, क्योंकि आप रहमदिल और अच्छे इंसान। वो मान गए इस शर्त के साथ कि किसी को पता न चलने पाए। 14 सोने के सिक्के मेरे मेहर करार पाए, 3 महीने भी नहीं गुजरे थे कि मुझे एक जाली मुख्तारनामे के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया। उसके बाद मुझे तलाक दे दिया, मेरा मेहर भी अदा कर दिया, 14 सिक्के। इतने मालदार थे, ये कैसा इंसाफ था? जो भी था मैं उनकी बीवी बन चुकी थी, मेरी जिंदगी खराब कर चुके थे। अम्मी तो इसी गम में मर गई, अब मैं बची थी और एक बीमार बाप और एक तारीख मुस्तकबिल, और अब सब कुछ तुम्हारे सामने है।
उसने तुम्हें कैसे बेवकूफ बनाया?
والد صاحب کی وجہ سے اس کے پیچھے نہیں جا سکی. اس نے بھی موقع کا فائدہ اٹھایا اور بھاگ گیا. شاید اچھا ہی ہوا.
اور ربابہ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا؟
نہیں.
یہ بتاؤ تم شروع سے ہی وکیل کے ساتھ تھی؟ میری سمجھ میں نہیں آتا, وہ تو خود ہی ایک گینگ ہے, وہ تمہارا پارٹنر کیسے ہو گیا؟
ایک بار جب میں نے اشرف صاحب کے موبائل پر فون کیا تو میرے کچھ بولنے سے پہلے ہی تم نے بولنا شروع کر دیا. تم سمجھ رہے تھے کہ کامران نے فون کیا ہے, سب کچھ بتا دیا. اشرف صاحب کی موت سے لے کر ان کی لاش کے بدلے رقم کی بات تک میں نے سوچا اچھا موقع ہے, اور چونکہ میں اکیلی یہ کام نہیں کر سکتی تھی اسی لیے وکیل سے رابطہ کیا. پتا چلا کہ اسے سب کچھ معلوم ہے. پھر ہم نے ساتھ کام کرنے کا فیصلہ کیا. اسے میرے منصوبے پسند آئے تھے.
جلال کو بیوقوف بنانے کے منصوبے نا, وہ وکیل کے جل جانے کا کیا معاملہ تھا؟
اچانک ہی ایسا ہو گیا تھا, اسے مجھے بتانے کا موقع ہی نہیں ملا.
میرے ساتھ کیوں کھلواڑ کیا؟ کیونکہ میں صاف دل کا آدمی ہوں اس لیے؟
کیونکہ لاش تمہارے پاس تھی, کیونکہ تمہیں ان کی موت کا علم تھا.
کیونکہ میں بیوقوف تھا, سوچا اسے آگے کر کے اپنے ڈھال بنا لیں گے اور پھر بھاگ لیں گے. بھاڑ میں جا جلال, یہ نہیں سوچا کہ جلال خود ہی برباد ہے, جلال خود ہی بے گھر ہے, بے روزگار ہے, سچائی انسانیت کے علاوہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. لیکن وہ مر گیا, وہ جلال اب مر گیا. بیوی سچائی یعنی بکواس, سچائی یعنی گدھاپن, سچائی یعنی بیوقوفی.
جلال
اشرف صاحب, بس میں تھک گیا. معلوم نہیں تم کہاں ہو, لیکن یہ میرے بس کا نہیں ہے. اب میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا. جلال,
السلام علیکم ابا.
السلام علیکم مامو. کیا حال ہے لڑکے؟ अरे हाँ, मैं भूल गया, किसी चीज की जरूरत तो नहीं है ना?
नहीं शुक्रिया।
ठीक है, तो फिर मैं सुबह आऊंगा तुम लोगों लेने। ये भी रख लो, मेरा पैसा नहीं है, अशरफ साहब का है।
परेशान नहीं हो, रुबाबे को भी तलाश कर लेंगे।
मुझे यकीन है।
कमबख्त वकीली ने मेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा।
जानता हूं, लेकिन उसे भी ढूंढ लूंगा। फिलहाल अभी तो तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। आदमी अपनी बहन से बात नहीं कहेगा तो फिर किससे कहेगा?
नरगिस के बारे में भी मुझे बताना।
बिल्कुल बताऊंगा। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये एड्रेस बहुत बड़ा सुराग है। बस अब गुजारिश यह है कि कमरे में चले जाइए आप। आ गए?
अब पूरी तरह भरोसा हुआ?
हाँ भाई आओ।
अच्छा बताओ कहानी क्या है?
अरे नरगिस कुछ पता चला?
नहीं कुछ नहीं।
जरा सूरत तो दिखा।
मुझे मौत आए, नरगिस की कसम कुछ पता नहीं है। मुझे भी इसकी फिक्र है, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ भाई। तुम और क्यों परेशान कर रहा हो?
हाँ भाई।
ओफो, ये क्या बात हुई?
चक्कर क्या है?
बड़ा कीमती है ये।
समझ में नहीं आ रहा, इतनी बड़ी बिल्डिंग, न कोई देखभाल करने वाला, न कोई वॉचमैन।
शायद घर में ना हो।
देखो इस सूरत में से हमें से किसी को पहरा देना होगा। कभी ना कभी तो वकीलिया उसके ग्राहकों में से कोई ना कोई इधर का रुख करेगा ही।
अगर अब तक उसे बेच कर उसने अपना रास्ता ना लिया होगा तब।
मुझे नहीं लगता, दो चार पैसे का मामला तो है नहीं, और फिर उसके घर के लिए बेवकूफ खरीदार भी तो आसानी से नहीं मिलेगा।
अच्छा जलाल, तुम्हें यकीन है कि ये अशरफ ही का घर है?
हाँ और क्या, क्या हुआ?
असल में मैं सोचता हूँ कि कहीं
नहीं, मुझे इस पर पूरा भरोसा है भाई। तुम जाने दो, तुम्हारी सुई भी उसी पे जाके अटक जाती है।
ठीक है ठीक है भाई, अब जब तुम्हें उस पे एतमाद है तो फिर हमको भी एतमाद है भाई उस पर।
देखो एक सेकंड के लिए भी इमारत से नजर नहीं हटाओगे, और सुबह जब मैं आऊंगा तो तुम घर पे जाके सो जाना, समझे?
तो क्या होगा?
तो फिर से पहरेदारी करोगे और क्या?
भाई कौन अक्लमंद आदमी रात के वक्त यहाँ घर खरीदने के लिए आएगा है?
वो जो वकील है ना, वो सब कुछ कर सकता है।
जलाल
हाँ,
आज रात तुम ही यहीं रुक जाओ।
अभी खोटा है तुम्हारे दिल में ना?
ठीक है। सुनो जलाल, सुबह 8 बजे ना आए तो मैं चला जाऊंगा।
फिर मुझे हुक्म दे रहे हो जबरदस्ती का? ठीक है भाई 8 बजे हाजिर हो जाऊंगा, बस ऐसे खड़े ना हो ना कि वकील की नजर तुम पर पड़ जाए। किसी कोने में जाके छुपके खड़े हो जाना, समझे? खुदाफिज।
बड़ा अच्छा किया जो ये कह दिया, नहीं तो मुझे क्या मालूम। अरे क्या फूटी किस्मत है।
उम्मीद का दामन तो नहीं छोड़ा है?
सिर्फ ख्वाब देखता हूँ। अगर रबाबा न मिले तो नरगिस भी नहीं मिलेगी। क्या बताऊं, ऐसा लगता है कि इन दोनों का मुस्तकबिल एक दूसरे से जुड़ा हुआ है।
मिल जाएंगे दोनों।
सफर, अगर रबाबा न मिली तो, अगर मर चुकी हो तो क्या होगा?
उम्मीद रखो।
किस चीज की? किसके सहारे?
दिल के सहारे, ईमान के सहारे, नरगिस से मोहब्बत के सहारे।
डर लगता है कि अब इसका भी कोई फायदा ना हो।
जिस दिल में इश्क पलता हो वहां डर की गुंजाइश नहीं होती।
मैं बहुत अकेला हूं।
ये साबित कर दो कि उसे चाहते हो, ताकि उसके मुंह से भी सुन लो कि वो भी तुम्हें चाहती है।